लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो ब्याज और सूद खोरी से अपना धन बढ़ाता, वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है। जो संहिता पर कान नहीं लगाता, उसकी प्रार्थना भी घृणित है। जो धर्मी को कुमार्ग पर ले चलता, वह स्वयं गड्ढे में गिरेगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होगी। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के 8 से लेकर 10 तक के पदों में निहित शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। उक्त पदों में इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि कुछ लोग आर्थिक हिंसा के माध्यम से अमीर बनते हैं। वे उच्च और अनुचित ब्याज यानी सूदखोरी से धन बटोरते हैं या अपनी शक्ति का उपयोग धोखाधड़ी, चोरी और जबरन वसूली के लिए करते हैं। सूदखोर गरीब कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर दया का दिखावा करता है। यह दर्शाता है कि वह उसकी मदद करता है, किंतु अपने धन का चौगुना या उससे भी अधिक वापस लेकर उसे लूटता है, उसके साथ छल करता है। ऐसे सूदखोरों की प्रार्थना भी घृणित है। उनकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं होती, बल्कि दिखावा मात्र होता है। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को सुनने या सम्मान देने के लिए बाध्य नहीं जो ईश वचन की उपेक्षा करते हैं। प्रार्थना करने के लिए आवश्यक है विनम्र हृदय से ईश वचन को सुनना तथा उसे अपने जीवन पर अमल करना, अन्यथा हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को सुग्राह्य नहीं होंगी। फिर 28वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जो धर्मी को कुमार्ग पर ले चलता, वह स्वयं गड्ढे में गिरेगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होगी। श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ में यही कहा गया है कि बहकाने वालों का विनाश होगा जो भले लोगों को पाप और शरारत में फंसाने का प्रयास करते हैं, जो धर्मी लोगों को बुरे मार्ग पर भटकाने में गर्व महसूस करते हैं, उन्हें जाल में फंसाकर ताकि उनका अपमान करें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि ऐसे प्रलोभनकर्ता खुद ही गड्ढे में गिरेंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 14वें और 15वें पदों में भी ऐसे लोगों की कड़ी निंदा की गई है। प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें भी रोक देते हो। इस प्रकार श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय की 3 बुनियादी विशेषताएं हैं, प्रभु का भय, आध्यात्मिकता और कौशल। प्रभु का भय अर्थात ईश्वर और उनके नियमों के प्रति आज्ञाकारिता और ईश्वर के वचनों के प्रति गहन सम्मान और श्रद्धा, जो मनुष्य को अवश्य ही सुख शांति से जीने की गारंटी देगी।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा।
और अब आइए 28वें अध्याय के 11 से लेकर 14 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, धनी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, किंतु समझदार दरिद्र उसका भांडाफोड़ करता है। जब धर्मी विजयी होता है तो महोत्सव होता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं। फिर कहता है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नत नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार होगा। श्रोताओ, जिन लोगों के पास धन दौलत होती है वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, क्योंकि चाहे वे अन्य बातों से अनभिज्ञ हो, वे जानते हैं कि कैसे धन प्राप्त करना और कैसे उसे बचाना है। और जो लोग धन संपत्ति के अभिमानी होते हैं वे अपेक्षा करते हैं कि वे जो कुछ भी कहें उसे एक वाणी और कानून के रूप में माना जाए और कोई भी उनका खंडन करने का साहस न करे। बेल्जबूब के सदृश उनका घमंड चापलूसों द्वारा पोषित होता है, वे उनकी मेज पर भोजन कर अपनी बुद्धि का बखान करते हैं। इनके विपरीत गरीब लोग होते हैं जो प्रायः घमंडी दौलतमंदों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत कर ज्ञान प्राप्त किया है। वे प्रतिष्ठावान होते हैं क्योंकि ईश्वर अपने वरदानों को विविध रूप में वितरित करते हैं। अस्तु अपनी धन संपदा पर हम घमंड कदापि न करें और न ही गरीब या निर्धन का उपहास करें, क्योंकि वह भी आप ही की तरह ईश्वर द्वारा सृजित और मनुष्यों को दिए गए वरदानों से संपन्न होता है। फिर लेखक कहता है, जब धर्मी विजयी होता है तो महोत्सव होता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं। तात्पर्य यही कि ईश प्रजा का सुख उनके राष्ट्र का सम्मान है। जब धर्मी लोग आनंदित होते हैं, जब उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिलती है, अपने धर्म का स्वतंत्र अभ्यास मिलता है, उन्हें सताया नहीं जाता, जब सरकार उनका समर्थन करती है और वे समृद्ध होते हैं, और इससे भी अधिक जब उन्हें वरीयता दी जाती है और उनके हाथों में शक्ति दी जाती है, तो देश महान बनता है और गौरवान्वित होता है। किंतु जब दुष्ट प्रबल होते हैं तो भले लोग अस्पष्टता में धकेल दिए जाते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भागने हेतु मजबूर होना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतने व्यापक रूप से व्याप्त रहता है कि लगता है मानो कोई भला व्यक्ति नहीं बचा, सर्वत्र दुष्टों का ही बोलबाला है। 28वें अध्याय के 13वें पद में लेखक कहता है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। श्रोताओं, इन पदों में यही कहा गया है कि पाप में लिप्त होना, उसे कम करना या माफ करना, उसे नकारना या उसे छिपाना, या फिर उसका दोष दूसरों पर मढ़ना मूर्खता है। जो इस प्रकार अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि देर सवेर उसका पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकट न हो, और फिर पापी का अंतःकरण अनवरत उसे काटता रहेगा, उसे सच्ची शांति कदापि नहीं मिल पाएगी। स्तोत्र ग्रंथ के 32वें भजन में दाऊद ने खुद स्वीकार किया कि जब तक उसने अपने पापों को छिपाया और मौन बैठा रहा, तब तक वह निरंतर व्याकुल रहा। इस भजन का तीसरा और चौथा पद इस प्रकार है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर करहाने से मेरी हड्डियां चीजती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। अस्तु श्रोताओ, पाप स्वीकार करने से पाप की क्षमा भी मिल जाती है और पश्चातापी दया का पात्र बनता है। यह तो स्वाभाविक है कि जब तक रोगी अपने रोग को छिपाता है तब तक वह उपचार की आशा कैसे कर सकता है। फिर 28वें अध्याय के 14वें पद में लेखक कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। श्रोताओ, वही मनुष्य खुश होता है जो हमेशा अपने मन में ईश्वर, ईश्वर की महिमा, भाई और पड़ोसी की भलाई, शासन के प्रति पवित्र भय और श्रद्धा रखता है, जो ईश्वर को नाराज करने और उनकी नाराजगी मोल लेने से डरता है, ऐसा व्यक्ति विवेकशील कहलाएगा, जो बुराई के आभास से डरता है, जो हमेशा खुद की पर्याप्तता पर अविश्वास करता है और मुसीबतों एवं बदलावों की उम्मीद में रहता है, ताकि जब भी वे आए तो उसे कोई आश्चर्य न हो। जो इस तरह का भय रखता है, वह विश्वास और सतर्कता का जीवन जिएगा, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति सदैव खुश रहेगा। ऐसा व्यक्ति धन्य है, पवित्र है।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा, तुझे चाहता बस मेरा प्रभु है शरण शिला, जो शरणागत का डेरा, वही ढाल वह परम सहायक महादुर्ग है मेरा, सभी भांति गौरव गाय।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम के जमेली अस्पताल में संत पापा फ्रांसिस द्वारा व्यतीत रात के बारे में परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने गुरुवार प्रातः एक टेलीग्राम संदेश के माध्यम से कहा, रात शांतिपूर्वक गुजरी, संत पापा उठे और आराम कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सुबह का नाश्ता किया। बुधवार शाम को अपने अपडेट में वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने बताया था कि संत पापा फ्रांसिस की नैदानिक स्थिति स्थिर है और वे अपने सबसे करीबी सहयोगियों से मिलने में सक्षम रहे, तथा बुधवार अपरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी ने भी उनकी भेंट की। बुधवार संध्या जारी परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने प्रकाशित किया कि संत पापा फ्रांसिस की नैदानिक स्थिति स्थिर है, तथा चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए गए रक्त परीक्षण विशेष रूप से सूजन सूचकांक में थोड़ा सुधार दिखाते हैं। यह भी कहा गया कि बुधवार सुबह नाश्ते के बाद संत पापा ने कुछ समाचार पत्र पढ़े और फिर अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ मुलाकात की। दोपहर के भोजन से पहले उन्होंने पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किया, तथा अपरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी ने अस्पताल में उनकी भेंट की। यह भेंट लगभग 20 मिनटों तक चली। इसी बीच प्रधानमंत्री मेलोनी के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री ने संत पापा को इटाली सरकार और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं अर्पित की। मेलोनी ने कहा, मुझे उन्हें सतर्क और उत्तरदायी पाकर बहुत खुशी हुई। हमेशा की तरह हमने मजाक किया। उन्होंने अपना जाना पहचाना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया है। और इसी बीच इटली के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने बुधवार 19 फरवरी को एक वक्तव्य प्रकाशित कर संपूर्ण विश्व के कैथोलिकों से संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना का आग्रह किया है। 14 फरवरी से द्विपक्षीय न्यूमोनिया के कारण संत पापा फ्रांसिस रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ हेतु इटली ही नहीं अपितु फिलीपींस से लेकर एंग्लिकन कलीसिया और समस्त विश्व से शुभकामना संदेश प्रेषित किए जा रहे हैं, तथा प्रार्थनाएं अर्पित की जा रही हैं। इटली के धर्माधीक्षों ने सभी कलीसियाई समुदायों को दुख की इस घड़ी में प्रार्थना के साथ संत पापा फ्रांसिस का समर्थन करने तथा उनके प्रति अपनी निकटता को नवीकृत करने के लिए आमंत्रित किया है। रोम धर्म प्रांत के कार्डिनल और प्रतिधर्माध्यक्ष बाल्दासार रीना ने विश्वासियों को आमंत्रित किया है कि वे ख्रीस्त त्याग से पहले एक घंटे की मौन आराधना कर संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने लिखा, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का काम प्रभु को सौंपते हुए हम स्नेह पूर्वक संत पापा को गले लगाते हैं। कार्डिनल रीना ने इस बात पर जोर दिया कि राजधानी के श्रद्धालु हमारे परम धर्माध्यक्ष की स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान और विश्वास के साथ नजर रख रहे हैं। एक घंटे की मौन प्रार्थना का आग्रह कर कार्डिनल ने कहा, एक बड़े परिवार के रूप में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे परमाध्यक्ष को इस नाजुक क्षण का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करें। फिलीपींस में कालकून के धर्माध्यक्ष और फिलिपिनी कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल पाब्लो विर्जिलियो डेविड ने विश्वासियों से इस कठिन क्षण में संत पापा के स्वास्थ्य लाभ और स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना का अनुरोध किया है। इसी बीच फिलीपींस में कार्यरत परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष चार्ल्स ब्राउन ने फिलिपिनी कैथलिक रेडियो स्टेशन रेडियो वेरिता से इसी अनुरोध को दोहराया और उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना की पुष्टि की जो इस समय संत पापा फ्रांसिस की देखभाल कर रहे हैं। इसी प्रकार लिस्बन के प्राधिधर्माध्यक्ष रूई वलेरियो ने बुधवार को पुर्तगाली राजधानी की सभी पल्लियों और समुदायों को एक पत्र भेजकर उनसे ख्रीस्त त्यागों के दौरान संत पापा के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना का आग्रह किया। महाधर्माध्यक्ष वलेरियो ने लिखा, विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस के लिए भाइयों, आइए हम प्रार्थना करें ताकि इस नाजुक क्षण में उन्हें मजबूती और सांत्वना मिले तथा वे अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को फिर से शुरू कर सकें। और ग्रेट ब्रिटेन से यॉर्क के एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष स्टीवन कॉटरेल ने लंदन के कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष विंसेंट निकोलस को एक पत्र लिखकर अपने सामीप्य का आश्वासन दिया है। उन्होंने लिखा, मैं आपको इस नाजुक क्षण के समय संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए मेरी और कई एंग्लिकन श्रद्धालुओं की प्रार्थनाओं का आश्वासन देना चाहता हूं। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि महामहिम संत पापा फ्रांसिस को सुसमाचार की आशा से पोषण मिले तथा वे इन दिनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उपचार को जान सकें। एंग्लिकन महाधर्माधीश कोटरेल के पत्र के जवाब में कार्डिनल निकोलस ने उनकी करुणा और उत्कंठा के लिए आभार व्यक्त किया और इस बात पर बल दिया कि संत पापा फ्रांसिस इतने सारे लोगों की प्रार्थनाओं के समर्थन से उत्साहित हैं। उन्होंने लिखा, उदारता और भाईचारे से भरे आपके शब्द उन गहन बंधनों के प्रमाण हैं जो हमें यीशु मसीह में जोड़ते हैं। सेनेगल के डाकार शहर में 17 से 21 फरवरी तक साहेल के लिए जॉन पॉल द्वितीय परम धर्म पीठीय न्यास के निर्देशक अपने 43वें सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं ताकि संत पापा फ्रांसिस द्वारा रोमन कुरिया में हाल ही में किए गए सुधार के आलोक में अशांत अफ्रीकी क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की जा सके। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1980 में अफ्रीका की अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा के बाद 1984 में उक्त परम धर्म पीठीय न्यास की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य स्थानीय कलीसियाओं और समुदायों के सहयोग से 9 साहेल देशों में सूखाग्रस्त आबादी को परम धर्म पीठ का ठोस समर्थन प्रदान करना था। साहेल के अंतर्गत बुर्किना फासो, केप वेर्दे, गिनी बिसाओ, माली, मौरितानिया, नाइजर, सेनेगल तथा चाड शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक हैं। 17 से 21 फरवरी तक जारी साहेल न्यास के उक्त सत्र में इस तथ्य पर बल दिया जा रहा है कि सशस्त्र संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं अफ्रीका को और अधिक कमजोर बना रही हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।